कहानी की श्रृंखला में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और मैं लाइब्रेरियन हूँ केवी सौरखन। कहानी की इस श्रृंखला में आज हमारी कहानी है काबुलीवाला। काबुलीवाला रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी बांग्ला भाषा में लिखी गई है। इसमें उन्होंने एक नन्ही बालिका तथा काबुल के एक पठान के सहज सने का चित्रण किया है तथा पिता के वात्सल्य की झांकी प्रस्तुत की है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। मेरी 5 वर्ष की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन मैं सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूट से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी, अचानक वह खेत छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे वह मकान की ओर आने लगा, मिन्नी डर के भीतर भाग गई। उसे लगा कहीं वह उसे पकड़ ना ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुले वाले की झोली में के अंदर अगर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे पूछा, कुछ सौदा खरीदा या फिर? फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर को दूर करने के लिए उसे बुलाया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर मिनी को देने चाहे पर उसने कुछ ना लिया। वह डर कर घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय कुछ इस तरीके से हुआ। कुछ दिन के बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था, देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली में बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम देकर मिन्नी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया है। दोनों में वही बातें होती और वह खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिन्नी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिन्नी खूब हंसती। हर सर्दियाँ के अंत में काबुली अपने घर चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता मगर फिर भी वह प्रतिदिन मिन्नी से एक बार मिल जाता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया गया कि अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे हुए ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते में खून का दाग है और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों की बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले, कहती हुई मुन्नी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मुन्नी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मुन्नी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई, तब उसने घूसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिन्नी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए, आज मेरी मिन्नी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना ही चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिन्नी अब भी वह बच्ची ही है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले, चिल्लाती हुई दौड़ती हुई चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की कोई रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वे कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वे स्वयं ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर वह जरा ठहर कर बोला, आपकी बच्ची के जैसे मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लेकर आया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को वो छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गली कूचों में से सौदा बेचने आता है। मेरी आंख भर आई। मैं सब कुछ भूल कर मैंने उसी समय मिन्नी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक पहने और गहने पहने मिन्नी शर्म से सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हुई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो पका गया, उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? मिन्नी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिन्नी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ, कौन जाने, वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। रविंद्रनाथ ठाकुर।